इशिका राधिका से मिल रही थी। पहले वे दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो रही थी, तभी अचानक राधिका के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। इशिका उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी आज पहली बार उनकी आंखों में इशिका के लिए अविश्वास के भाव थे। अचानक उनके मुंह से निकला कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। इससे इशिका समझ गई कि राधिका ईशानी के बारे में जान चुकी है। ईशानी को बचाने में नाकामयाब रहने की वजह से शर्म से उसकी नज़रें झुक गई थी। तभी अर्पित वहां आया। अर्पित इशिका और अभिमन्यु को किसी टेस्ट के लिए वहां से ले जाने आया था। अर्पित ने जबरदस्ती इशिका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। तभी अभिमन्यु ने आगे जाकर उसका रास्ता रोक लिया। अर्पित की बदतमीजियों पर इस वक्त अभिमन्यु के चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। उसने अर्पित की आंखों में आंखें डालते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अभी इसी वक्त इसका हाथ छोड़ो। और नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या कर लोगे? अर्पित ने भौहें उठाकर पूछा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, इसके बाद यहाँ जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा मिस्टर मर्चेंट। जब तक सामने वाला मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तब तक मैं कोई स्टेप नहीं उठाता हूँ। अब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो आई कॉन्ट हेल्प माई सेल्फ। अभिमन्यु का एटीट्यूड देखकर अर्पित के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उसकी बात का जवाब दे पाता उससे पहले अभिमन्यु ने पंच बनाया और अर्पित के मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। अर्पित के नाक से खून बहने लगा। अचानक हुई इस मारपीट से सब लोग सकते में आ गए थे। वहां मौजूद गार्ड हरकत में आ गए थे और उन्होंने अभिमन्यु पर बंदूकें तान ली। अर्पित ने इशिका का हाथ छोड़ा और अपनी नाक से खून साफ करते हुए कहा, ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है मिस्टर मर्चेंट, कभी ये साइलेंस से बाहर निकालकर धमकी देना, फिर पता चल जाएगा अभिमन्यु राजवंश कौन है, अभिमन्यु ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। उस पर अर्पित की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, इस वजह से तुम्हें जितना उछालना है उछल लो अभिमन्यु राजवंश। एक बार रिपोर्ट आने दो, अगर साबित हुआ कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा, अर्पित बोला। वो इस वक्त अभिमन्यु से उलझना नहीं चाहता था, वैसे भी यहाँ हो रही फाइट से गौतम अनजान थे। गौतम ने तो उनके आते ही टेस्ट करने से मना कर दिया था, पर अर्पित उन्हें बिना बताए अभिमन्यु और ऋषिका को ले जाने आया था। अर्पित की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने उसी अंदाज में कहा, अपनी दुनिया में रहते हुए आप कुएं के नंढक बन गए मिस्टर मर्चेंट। आपको क्या लगता है कि दुनिया आप ही के इर्द गिर्द घूमती है? आजमा कर देख लीजिए, हमारी मर्जी के बिना टेस्ट होना तो दूर की बात है, आप छू तक नहीं पाएंगे। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपने कमरे में ले जाने लगा। अभिमन्यु ने कभी जोर जबरदस्ती या अपनी ताकत आजमाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो शांत भी नहीं रहता था। आज उसने ये साबित कर दिया था। कमरे के अंदर आते ही अभिमन्यु ने दरवाजा बंद किया। उसने इशिका के हाथ की तरफ देखा जिस पर अर्पित की उंगलियों के निशान बन गए थे। उसने पकड़ा भी काफी टाइटली था। अभिमन्यु ने महसूस किया कि इन सब में इशिका काफी खोई हुई और चुप थी, वरना वो खुद अर्पित या मर्चेंट फैमिली के एक्सपेरिमेंट करने के खिलाफ थी। राधिका से मिलने के बाद वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। इशिका चाहती तो खुद से अर्पित को दूर कर सकती थी, पर उसने वैसा नहीं किया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो। जरूर मर्चेंट फैमिली ने ईशानी के बारे में मिसेस सिन्हानिया को बताया होगा। इशिका की आंखें नम होने लगीं। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि माँ को सब पता है, मैंने पहली बार उनकी आंखों में मेरे लिए निराशा देखी है अभिमन्यु। वे मुझसे काफी डिसअपॉइंट हो गई हैं। तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब उन्हें सच नहीं पता था वे मुझे मालविका की बेटी समझती थी, तब भी वे मुझे लेकर कॉन्फिडेंट रहती थी। उनका सिर का गर्व से ऊंचा करने के लिए मैंने खुद को साबित किया, खुद को सक्सेसफुल किया। तुम ज्यादा सोच रही हो, अभिमन्यु ने उसे शांत करते हुए कहा। मिसेस सिंघानिया भी परेशान थी, वे तुमसे बहुत प्यार करती हैं और अभी तुम पर प्राउड फील करती हैं। पता नहीं अभिमन्यु, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर उन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे मर्चेंट फैमिली के वो सारे एक्सपेरिमेंट भी करवाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, इशिका ने सुबकते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। इशिका ने राधिका के लिए जो डिसीजन दिया था वो अभिमन्यु को थोड़ा हैरान कर रहा था। वो इशिका की कश्मकश को समझ सकता था। उसने इशिका को अपने सीने से लगाकर सहलाते हुए कहा, जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लो, तुम काफी समझदार हो और सोच समझ कर फैसला लेती हो, फिर अचानक इन लोगों की बातों में कैसे आ सकती हो? मिसेस सिंघानिया को बहुत दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि एक बेटी को खोने के बाद उनकी दूसरी बेटी इस पागलपन पर उतर आई है। अभिमन्यु इशिका को समझाने की कोशिश कर रहा था। वाकई इशिका राधिका के बर्ताव से काफी हर्ट हुई थी। वहीं अभिमन्यु और इशिका के कमरे से जाने के बाद अर्पित ने गुस्से में राधिका की तरफ देखते हुए कहा, ये लोग बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन खुद को नहीं बचा पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो, जब पापा
सामने आएंगे तब ना तो अभिमन्यु राजवंश कुछ कर पाएगा और न ही तुम्हारी लाडली बेटी। राधिका ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में लाचारी के भाव थे। अर्पित ने एक नजर उसे देखा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही श्रुति राधिका के पास आई। श्रुति को देखते ही राधिका ने रोते हुए कहा, क्या हमारी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा श्रुति? मेरी दूसरी बेटी के बारे में मुझे पता तक नहीं था, वो इस दुनिया से चली गई तो मुझे इतना दुख हो रहा है। अगर ईशिका को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन तुमने ईशिका के साथ काफी रूडली बिहेव किया है। तुम्हें बचाने के लिए वो यहाँ तक आ गई। तुमने महसूस नहीं किया होगा पर तुमने अपने इमोशंस में ईशिका को हर्ट कर दिया। हमें नहीं पता उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी, मगर इतना जरूर कह सकती हूँ कि ईशिका ने तुम्हारी दूसरी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की होगी, श्रुति राधिका को समझा रही थी। तभी उसे भी एहसास हुआ कि हाँ, अपने इमोशंस के चक्कर में उसने वाकई ईशिका को तकलीफ पहुंचाई थी। राधिका ने नामे सिर हिलाकर रोते हुए कहा, मेरा यकीन करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे उससे बात करनी है। अब कोई फायदा नहीं है, वो अपने कमरे में वापस जा चुकी है। अगली बार वो तुमसे मिलने आए तो तुम उसे बताना कि तुम्हें उस पर पूरा यकीन है, बच्ची तुम्हें बचाने के लिए इतनी दूर तक आ गई, श्रुति ने जवाब दिया। राधिका ने उसकी बात पर हामी भरी। वहीं कमरे के अंदर अभिमन्यु और ईशिका साथ में बेड पर लेटे हुए थे। अभिमन्यु की आंख लग गई थी तो वहीं ईशिका राधिका के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर पहले ऊपर जो भी हुआ उसके बारे में गौतम और अर्पित को सब कुछ पता चल चुका था। अर्पित पर उन्हें गुस्सा आ रहा था पर अभिमन्यु ने भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अचानक ईशिका के कमरे का लैंडलाइन बजा और गौतम ने उसे कॉल पर कुछ कहा। उसे सुनने के बाद ईशिका ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपकी लैब में आ रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ईशिका ने कॉल कट कर दिया। जाने से पहले उसने एक नजर अभिमन्यु की तरफ देखा जो गहरी नींद में था। ईशिका ने कसकर आंखें बंद की और धीरे से उसे सॉरी कहा। अभिमन्यु के अपने समझाने के बाद भी ईशिका उसे बिना बताए अपने कदम कमरे से बाहर बढ़ा रही थी। ना जाने गौतम मर्चेंट ने उसे ऐसा क्या कहा था जिसे सुनने के बाद ईशिका टेस्ट करवाने के लिए खुद से तैयार हो गई थी।
अच्छा, क्या लगता है गौतम ने ऐसा क्या कहा होगा जिसके बाद ईशिका तैयार हो गई? आई नो, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, कल से मैं दो पार्ट पोस्ट करूंगी क्योंकि आपको लगता है कि कम पार्ट आने पर आप लोग कहानी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग इतना करना कि पढ़कर रेटिंग दिया करो और कमेंट भी किया करो, ये तो ऑटोमेटिक भी होता है जिसे आप एक्टिव कर सकते हो। दूसरा, आप मेरी बाकी कहानियों को भी पढ़कर देखो, आपको अच्छी लगेंगी। उनमें से कुछ कहानियाँ तो कंप्लीट भी हैं, आपको नए भाग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी कंप्लीट कहानियों की लिस्ट आपको दे रही हूँ ताकि आप नाम से उन्हें सर्च कर लें, या फिर आपको ऐप के होम पेज या फिर मेरे प्रोफाइल पर भी मिल जाएंगी। 1. अंडर द माफिया मून, 2. टाइड विद डेस्टिनी, 3. द रिप्लेस्ड प्राइड, 4. हिज फर्स्ट प्राइड, 5. फील्स लाइक इश्क, 6. लव इन द डार्क, 7. राजनीति अ डर्टी गेम, 8. इश्क अनहोनी।